मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के तहत मैं पिछले ही विषय को आगे बढ़ाना चाहूंगा और आप जानते हैं कि हम लोग प्री 2022 की तैयारी पर बातें कर रहे हैं और यह उसका तीसरा अंक है। लेकिन इससे पहले आइए जो कुछ दो बातें जो मुझे महत्वपूर्ण लगती हैं आपको बताई जानी चाहिए उन्हें सुन लें। कल की अगर आपने न्यूज सुनी हो तो उसमें आपको एक बड़ा खूबसूरत आंकड़ा मिला होगा। यहां आपको मैं सतर्क करना चाहूंगा कि जब मैं आंकड़ों की बात करता हूं तो आप ये मत समझिएगा कि ढेर सारे आंकड़े का जमावड़ा आपको अपने दिमाग को बना देना है। नॉट एट ऑल, बहुत ही थोड़े से जो बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े होते हैं बस उन्हें ही अपने दिमाग में रखना है। कल के रेडियो न्यूज में जो अभी आयुष्मान भारत बुनियादी ढांचा मिशन की शुरुआत कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो की थी परसों, उसके संबंध में एक खबर थी। थोड़ा सा डिटेल्स में बताया गया था, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने इसके बारे में थोड़े से विस्तार से जानकारी दी और उसके तहत उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की जो हम सब के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। वो ये कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि जो चार पांच गांव हैं उन चार पांच गांव के बीच में एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बन जाए। चार पांच गांव के बीच में, तो वहां गांव के जो लोग होंगे उन्हें बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, तो वहां उनका बकायदे जो बेसिक चेकअप होते हैं जैसे ब्लड शुगर या कह लीजिए शुगर का चेकअप होना है और जो दूसरे चेकअप होते हैं इस तरह के, उनके वो चेकअप हो जाएं, उनके वो इलाज भी वहीं हो जाएं। इसके बारे में हम लोगों ने कल थोड़ी बातें की थी, लेकिन आज उन्होंने दिया चार पांच गांव और अभी फिलहाल 1.5 लाख ऐसे चेकअप सेंटर बनाए जाएंगे। 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, तो ये 1.5 लाख आप याद रखिएगा। दोस्तों, जो दूसरी बात मुझे बतानी है, आज सुप्रीम कोर्ट के दो बड़े निर्णय आने हैं। एक निर्णय है कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो अधिकारी होते हैं सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में उनको आरक्षण दिया जाए या नहीं। देखिए, सरकारी नौकरियों में तो आरक्षण है आप जानते हैं, लेकिन प्रमोशन में उन्हें आरक्षण दिया जाए या नहीं, क्योंकि इसको लेकर के विरोध हो रहा था कि भाई एक बार ठीक है वो सर्विस में आ गए तो अब प्रमोशन में आरक्षण उन्हें नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन प्रमोशन में उन्हें आरक्षण दिया जाता है। और इसके पीछे तर्क यह है कि चूंकि इनकी रैंकिंग थोड़ी सी नीचे रहती है तो ये हाई लेवल तक नहीं पहुंच पाते उस सेवा के, तो वहां उनका प्रतिशत बहुत ज्यादा कम हो जाता है। देखिए, नीचे तो प्रतिशत वो जो रिजर्वेशन का है वो होता है, लेकिन ऊपर बहुत कम हो जाता है वो। इसको लेकर के आरक्षण दिया जा रहा था, तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या डिसीजन देती है। दूसरा है कि पेगासस मामला, जो हमारे एक तरह से आप यूं कह लीजिए कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, उसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आना है। देखिए, मैंने दो निर्णयों के बारे में बात की। जो आरक्षण का मामला है वो एक तरह से समानता पूर्ण जो समाज की स्थापना की हम बात कर रहे हैं या सोशल वेलफेयर की जो बात कर रहे हैं, सोशल जस्टिस की जो हम बात करते हैं, उससे जुड़ा है, जो आपके सिलेबस में है। और जो पेगासस का मामला है एक तरह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये दोनों ही मामले चूंकि आपके सिलेबस से जुड़े हुए हैं तो कल जब अखबारों में इसके बारे में छपेगा तो आपको उन्हें ध्यान से पढ़ना है। मैंने अब ये सोचा है कि अगर कोई घटना आगे घटित होने वाली है तो उसकी पूर्व जानकारी अगर मिलती है तो मैं आप लोगों को दे दूं, ताकि डेली ऑडियो लेक्चर सुनने से पहले ही जब आप न्यूज़ सुन रहे हैं मान लीजिए या अखबार पढ़ रहे हैं तो उसे ध्यान से पढ़ सके। तो आपकी इस सुविधा के लिए मैंने अब इस बात को भी ऐड करना शुरू कर दिया है और वह आज से। दोस्तों, आइए अब सीधे मुख्य विषय पर बात करते हैं, प्री 2022 की तैयारी के बारे में। और मैं टाइम टेबल की चर्चा आप सबसे कर रहा था। कल मुझे टाइम टेबल को लेकर के बहुत सारे मेल्स पढ़ने को मिले। सच पूछे तो उन मेल्स को पढ़ करके मुझे कोई बहुत ज्यादा खुशी नहीं हुई, माफ कीजिएगा मुझे ये बात कहने के लिए। आप लोगों के मेल पढ़ करके मैं आह्लादित हो उठता हूं, बहुत खुशी होती है, खासकर ये सोच करके खुशी होती कि नहीं आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप उत्सुक हैं इन चीजों के बारे में। लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि बहुत खुशी नहीं हुई उसे आप अन्यथा मत लीजिएगा, इस रूप में कि जो टाइम टेबल को लेकर के जो प्रश्न किए गए, मुझे लगता है कि सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को इस तरह के प्रश्न नहीं करने चाहिए। प्रश्न कैसे थे आप देखिए कि सर सुबह का टाइम टेबल बनाएं या रात का टाइम टेबल बनाएं, टाइम टेबल में किस विषय के लिए कितना कितना समय दें, टाइम टेबल कितने कितने मिनट का हो, क्या हम उसमें अपने खाने और सोने के घंटों को भी शामिल करें, इस तरह के प्रश्न पूछे गए। हो सकता है कि आप लोगों ने अभी तक टाइम टेबल बना करके पढ़ाई नहीं की हो इसलिए ऐसा कर रहे हों, लेकिन एक बात जो मैं आप लोगों से यहां विशेष रूप से इसके माध्यम से कहना चाह रहा हूं वो ये कि आप लोग सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को बहुत ज्यादा टेक्निकल एग्जामिनेशन मत समझिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि इसकी प्रिपरेशन इतने टेक्निकल तरीके से करनी है कि कितने घंटे ये पढ़ें, इसको कैसे पढ़ें, इसके कैसे नोट्स बनाएं, इसको कैसे लिखें, इसको कितनी बार रिवीजन करें, कितने दिनों के गैप के बाद रिवीजन करें, ये बहुत टेक्निकल हो जाएगा। इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे टाइम टेबल में ही सुबह का बनाए, शाम को बनाए, दोपहर का बनाए, कितने घंटे का बनाए, खाने का भी बनाए, ये बहुत टेक्निकल है, ये टेक्निकल चीज नहीं है। टाइम टेबल जब आप बना रहे हैं तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी क्षमताओं को देखिए, आप अपने रिक्वायरमेंट को देखिए, आप अपनी परिस्थितियों को देखिए। मैं अगर कह दूं कि सुबह 10 बजे से 2 बजे का आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए और पता लगा आप नौकरी में जा रहे हैं, फिर आप क्या करेंगे? आप देखिए आपकी जरूरत कितने घंटों की है। मुझे नहीं मालूम है कि आपकी पिछली तैयारी कैसी है, मुझे नहीं मालूम है कि आप किस बैकग्राउंड के हैं। जैसे अगर आप आर्ट्स के बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं या ह्यूमैनिटीज के, तो हो सकता है कि इनमें से बहुत से विषय ऐसे हों जो आपके पढ़े और समझे हुए हों, लेकिन अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आपको ज़्यादा समय की ज़रूरत है। आप स्टूडेंट हैं, आप कोचिंग ले रहे हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं, या आप अपने बिजनेस में लगे हुए हैं, तो इन सभी स्थितियों को देखते हुए प्लीज़ आप निर्णय लें और जो मैंने मूल बात कही है उस पर ध्यान दें। सैद्धांतिक बातों को पकड़ना सीखें। बहुत ज्यादा अगर बारीकी में चले जाएंगे तो तैयारी नहीं होगी, मैं आपको सतर्क करना चाह रहा हूं। मूल सिद्धांत क्या है? मूल सिद्धांत के बारे में मैंने आपको बताया कि 2022 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको 6 घंटे मिनिमम के बारे में सोचना चाहिए, और अगर आप 2023 के बारे में कर रहे हैं तो उससे कम। लेकिन ये जो मैं 6 घंटे की भी जो बात कर रहा हूं, ये फिर आपकी अपनी तैयारी के अभी के स्टेटस पर डिपेंड करता है कि अभी आपकी कितनी तैयारी है, कितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। हाँ, जो आप लोगों ने पूछा है, कुछ लोगों ने यह भी पूछा है कि किस किस विषय को कितना कितना समय दें, यह हो सकता है कि थोड़ा सा एक ऐसा प्रश्न है जिस पर आप किसी की राय जानना चाहेंगे, तो इस पर मैं जरूर आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। देखिए, पहली बात तो आप अपने दिमाग में नोट कर लीजिए कि आप भले ही 2022 प्री की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यह तैयारी मेंस के माध्यम से होगी। एक्सक्लूसिवली प्री की कोई तैयारी नहीं होती है। मैं इसे रिपीट कर रहा हूं कि एक्सक्लूसिवली प्री की कोई तैयारी नहीं होती है, तो फिर प्री की होती क्या है? जिसे आप कहते हैं कि मॉक टेस्ट आप सॉल्व कर रहे हैं, टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं ना, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस लेकर के सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप प्री की तैयारी के बारे में ही जानना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट सॉल्व करना ही प्री की तैयारी है, दैट्स ऑल, और प्री की कोई तैयारी नहीं है। आप जो तैयारी करते हैं वो मेंस की कर रहे होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो आपको टाइम टेबल बनाना है वो मेंस का बनाना है, प्री का नहीं। आप देखेंगे कि प्री की तैयारी खुद हो जाएगी, और जिस तरीके के क्वेश्चंस प्री में पूछे जाते हैं, मैं यहां आपको सतर्क करना चाहूंगा, या यूं कह लीजिए कि वार्न करना चाहूंगा कि अगर आप मेंस की तैयारी नहीं करेंगे तो प्री में पूछे गए क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो कैपेसिटी ही पैदा नहीं होगी कि आप उनमें से कुछ विकल्पों को एलिमिनेट कर सकें, हटा सकें और सही तक पहुंच सकें, ऐसा नहीं हो सकेगा। जब मैं मेंस की तैयारी की बात कर रहा हूं तो सीधी सी बात है कि आपको अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी लेकर चलना होगा, और जब आप प्री एग्जामिनेशन हॉल में बैठने जाएंगे तब तक आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी है वो पूरी हो जानी चाहिए। इसके बाद जो आपको 3 महीने का वक्त मिलेगा वो सिर्फ रिवीजन का वक्त होगा। जनरल स्टडीज का रिवीजन कर रहे हैं, ऐसे राइटिंग कर रहे हैं, जनरल इंग्लिश जरूरत है तो वो कर रहे हैं, ऑप्शनल पेपर को रिवाइज कर रहे हैं, बस। अब आप देखिए कि इसके लिए आपको कितने घंटे चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका नया नया ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो डेफिनेटली आपको 2 घंटे उसे देने चाहिए, लेकिन अगर आपका पहले से पढ़ा हुआ है तो आप 1-1.5 घंटे ऑप्शनल सब्जेक्ट को दें। अगर आपकी तैयारी हो भी गई है तो भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को 1.5 घंटे का समय दें ताकि वो मजबूत हो सके, और आपका स्कोर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट में है वो आप यूं कह लीजिए कि 500 में 300 होना ही चाहिए। 300 का मतलब है 60%, अगर आप अच्छी रैंकिंग चाहते हैं तो 1.5-2 घंटे ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए, राइट? और बाकी जो समय बचा हुआ है ये जनरल स्टडीज के लिए। जहां तक अखबार और न्यूज का सवाल है, उसे आप एडिशनल रख सकते हैं। और अखबारों के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप केवल एक अखबार पढ़ें जो नेशनल लेवल का है, जो अच्छा अखबार है, और उसे आधे घंटे से पौन घंटे का वक्त दें, दैट्स ऑल। बाकी आपको ज्यादा अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप हम लोगों को फॉलो कर रहे हो तो देखिए, दूसरे अखबारों के जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल कमेंट्स होते हैं या एडिटोरियल आर्टिकल्स होते हैं वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, आप उन्हें पढ़ लेंगे, आपका काम अच्छे तरीके से, यानी कि चल जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से चल जाएगा। लेकिन एक अखबार आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप हिंदी मीडियम का अखबार पढ़िए, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश मीडियम का अखबार पढ़िए। मीडियम को लेकर के कंफ्यूज्ड मत होइए, और ध्यान से पढ़िए, चलताऊ तरीके से नहीं। आपको अपने अखबार को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, जैसे कि आप कोई किताब पढ़ रहे हो, कोई आर्टिकल्स पढ़ रहे हो। तो ज्यादा से ज्यादा पौन घंटा मुझे लगता है कि अखबार के लिए आपको चाहिए, 15 मिनट रेडियो न्यूज के लिए चाहिए, और दूरदर्शन की न्यूज भी जो आप सुनेंगे, वो खासकर जो डिस्कशन आता है वो पार्ट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वो 10-15-20 मिनट का डिस्कशन होता है, उसे आप घूमते हुए, टहलते हुए, बैठे हुए बड़े आराम से सुन सकते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी तो ऐसे टॉपिक पर भी डिस्कशंस आ जाते हैं कि वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होते। अब आप कहेंगे कि कैसे हम जाने कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सीधी सी बात है कि सिलेबस आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। जो टॉपिक आपके सिलेबस से मैच नहीं कर रहा है वो आपके लिए काम का नहीं है। तो दोस्तों, टाइम टेबल बनाते समय बस इस तरीके से आप अपने समय को विभाजित कर दें, किस विषय से शुरुआत करेंगे, कैसे कैसे उन्हें पढ़ेंगे, इसके बारे में हम लोग आगे चल करके बातें करेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसके बारे में पूरी तरह से परिचित हो चुके होंगे कि क्या फिलॉसफी है टाइम टेबल बनाने की। एक बात और, आप 6 दिन का टाइम टेबल बनाएं, 7 दिन का नहीं, 1 दिन का गैप रखें, बिल्कुल गैप रखें। अगर आपको टाइम मिलता है भले पढ़े, लेकिन 1 दिन का गैप रखें, क्योंकि अगर आप 6 दिन का टाइम टेबल बनाएंगे तो वो 6 दिन का टाइम टेबल लगेगा, और अगर आप 7 दिन का टाइम टेबल बनाएंगे तो वो 7 महीने का टाइम टेबल लगेगा, जब तक कि प्री एग्जामिनेशन नहीं हो जाता। 6 दिन को निभाना आसान है, 7 महीने को निभाना बहुत मुश्किल है, ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में आज बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में कुछ दोस्तों के नाम हैं, अनामिका डे, शुभम यादव, रंजनी कुमारी सोनी, रेखा द्रविड़ और विवेक ठाकुर, आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही दोस्तों, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।